भक्ति सेवा करके करते हैं। आजकल तो खूब सस्ता है, इसलिए भक्ति भी सस्ती हो गई है, इसलिए होता ही नहीं है। हमने और भी लोगों को देखा तो वही कह रहे हैं, ये सभी लोग उनको ठाकुर महाशय कहते थे, पढ़े लिखे नहीं होने पर भी, और सब लोग उनको हृदय से आदर करते थे। इसे उनकी सेवा की बातें याद आ रही है और गुरु जी रो रहे हैं। आपने स्वयं प्रभुपाद प्रियतम श्री चैतन्य मठ स्वरूप, वो कैसे हैं? मठ किसको कहते हैं? ईंट के मकान को मठ नहीं कहते हैं, ये नरहरी सरकार ही गौड़ीय मठ है, प्रभुपाद ही मठ है, ऐसा व्यक्ति ही मठ है। मठ में से ऐसे आदमी हट यहाँ आ रही है, मठ रहे, ठाकुर जी भी रहे हैं, देखो चिड़िया भी नहीं आएगी। इसलिए शुद्ध वैष्णव आचार विचार जी में है, वो मठ है, इसलिए मठ बनने की चेष्टा करो। और बड़े बड़े मठ मंदिर बना देंगे तो तंजौर इत्यादि में, दक्षिण भारत में जैसे मंदिर है शून्य है, कोई नहीं जाता, ऐसा ही होता है। इसलिए मठ वो व्यक्तित्व है और भजन है, यदि भजन है तो वो मठ है, और यदि भजन नहीं है तो मठ फट कुछ नहीं है। आपके निकट रहने से ऐसा मालूम होता है कि मैं मठ से तन्य मठ में ही हूँ। आपने अक्रोध परमानंद नित्यानंद रहा, कभी उनको कभी बिगड़ते हुए हमने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। जब मैं आया मठ में तो उस डिपार्टमेंट से आया था, जबरदस्त डिपार्टमेंट से, तो आया तो उस दिन परिक्रमा थी उस पक्ष में, नवदीप धाम परिक्रमा की, उसके पहले ही करीब करीब एक महीना पहले आया, और हमारी दीक्षा और हरिनाम हो गया, किसी का होता नहीं था, गुरु जी ने कहने से दे दिया उन लोगों के, नरोत्तमानंद प्रभु। तो मैं अभी तो उस समय शरीर में ताकत थी, अभी 25-26 वर्ष का था, तो हमारे नरोत्तमानंद प्रभु जी जो लाए थे हमको, तो वो परिक्रमा होगी इसके लिए काफ़ी सब्जी की जरूरत है, तो वो बाहर सड़क पर खड़े होकर के और ग्वाले सब ला रहे थे सब्जी, और उनमें से दाम करके ले रहे, तो किसी कारण से रेट में या क्या कुछ बात हो गई, वहाँ के ये जो ग्वाले होते हैं बड़े अक्खड़ और गुंडे होते हैं, बस उनको कुछ उल्टा सीधा कर दिया, कर दिया तो इन्होंने संभालने की चेष्टा की, किंतु ये भी थोड़ा सा गर्म हो गए, तो तुम ऐसा कैसे करता है, तो उसने कुछ उठाया टोकरी या कैसे तैसे उनको कहीं लग गई शरीर, और रक्त निकला है, रक्त निकला है। जब रक्त निकल आया तो मैं बाहर देखा, रक्त निकल आया तब मैं देखा, और वहाँ पर और ही 20-25 वैष्णव लोग थे, किंतु किसी ने कुछ नहीं कहा, डर के मारे, और हमने देखा, अब हम मैंने उसे रहा नहीं, इतना बड़ा मोटा बांस था, एक 5-7 हाथ लंबा, हम मैंने आव नहीं देखा, ताव नहीं, और आगे न पीछे बांस था, और उसको एक बांस मारा, तो लंबा बांस था, वो बांस टूट गया और वो आदमी भी गिर गया, बहुत पहलवान लंबा चौड़ा भागा था वो, जब वो गिर गया अब वहाँ से भागा, और जाकर के अपने महल में खबर कर दिया। अब खबर देते तो वहाँ से सैकड़ों घोसा लाठी लठिया लेकर के निकले और आए मठ के सामने नरहरि प्रभु से, इन लोगों ने हमको तो खाके भीतर में कर सी मठ के भीतर, किंतु नरहरि प्रभु ने या गुरु जी ने, गुरु जी तो घर में रहे, नरहरि प्रभु बाहर आकर के सबको सम्मान, एकदम क्रोध नहीं, हमारे ऊपर में भी क्रोध नहीं है, मैं तो निकल जाता, तो कुछ नहीं कहा, सब लोगों को किसी प्रकार से शांत शांत कर करके जब वो चले गए तो उन्होंने धीरे धीरे कहा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ बड़े गुंडे हैं, आज तो बड़ी मुश्किल हो गया, नहीं तो आज मारते पीटते कुछ हो जाता, ये तो भगवान की कृपा है जो आगे से ऐसा मत करना, नहीं तो बाबा ही गड़बड़ हो जाएगी, तो हमारे ऊपर में कुछ भी असर नहीं, वैष्णव को ये ऐसा करेगा? तो वो इतने शांत थे अपने मोहल्ले भर में जाएंगे, आज उसके घर उस सबसे पूछेंगे क्या समाचार है, लड़का कैसा है, बहू माँ कैसी है, जैसे सनातन गोस्वामी करता, सब लोगों से बातचीत करके आते, सबकी कदर करते, सबको आदर करते, तब ये वैष्णव बनाते, ऐसे ही नहीं। आजकल तो चूना से क्या, वो पान से, वो थोड़ा सा चूना हट गया ना, बस हो गया हमारा भाई, ऐसा नहीं। वैष्णव को खूब सच्चे गुण संपन्न होना चाहिए, तब वो उसका गृहस्थी भी अच्छी चलेगी और इधर भी। तो प्रभुपाद जी का आज का विवाह तिथि है, अब सब लोग करीब करीब आए हैं, अब उनका हम अर्चन करेंगे और पूजन करके सब लोग उनके चरणों में पुष्पांजलि देंगे, सब लोग यथा योग्य थोड़ा सा प्रसाद लेंगे, हरि कथा ही प्रसाद है, यदि हरि कथा खूब अच्छी तरह से हुई तो ये प्रसाद हो गया समझो, और इसी को धारण करना है। हम लोगों को भी इनके जैसा दयालु होना चाहिए, जैसे इन लोगों ने सर्वत्र प्रचार करके हजारों लाख लोगों का आज तो विश्व में सर्वत्र ही हरि नाम का प्रचार किया, ऐसे हम लोग भी चेष्टा करेंगे अपने पास के, पड़ोस के, मोहल्ले के, इष्ट मित्र संबंधी कुटुंब पाहुन नाते नातेदार फ्रेंड मित्र सबको भगवान के भजन में लगाएंगे, ऐसा होना चाहिए, ये दया का प्रकृष्ट लक्षण। और जो ऐसा नहीं करते वो दयालु नहीं है। एक आदमी कोई कंबल दे देना उतनी दयालुता नहीं है जितना कि एक जीव को भगवान के तरफ में मोड़ देना है, ये सबसे बड़ी दयालुता है। यदि एक जीव, इनका कहना है ये प्रभुपाद जी का, यदि एक आदमी स्कूल अस्पताल इत्यादि बनाता है, सब कुछ दया का काम करता है उपकार का, किंतु भगवान के भजन में किसी एक जीव को उन्मुख नहीं करता, तो जो एक आदमी एक जीव को भी भगवान के तरफ में लाने की चेष्टा करते हैं, चलो भाई हरिनाम करो, हरिनाम करने से तुम्हारी गति होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। और यदि वो भगवान करने के लिए भजन करने आया, समझो जैसे उसका बहुत ही बड़ा उपकार किया, ऐसा उपकार उससे कोटि गुण उपकार होगा, अस्पताल स्कूल लड़की की शादी कपड़े कंबल देना, उससे कोटि गुण उपकार होगा, एक जीव को भगवान के तरफ में बोल दिया जाए, सदा के लिए उसके दुख दूर हो जाते हैं, भवन धन पार हो जाता है। इन्होंने कहा सबसे बड़ा संसार में श्रेष्ठ क्या चीज है, हरिनाम संकीर्तन ही क्या है, परम विजयते कृष्ण नाम संकीर्तन, यही उपास्य है, नाम करना भगवान का भजन पूजन करना एक है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है भगवान का नाम संकीर्तन। जो लोग सबको खुश करने की चेष्टा करते हैं वो किसी को खुश नहीं कर सकते, पांच में साली लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते, पांच में साली माने क्या,
पंचोपासक
इत्यादि हैं, गणेश भी प्रसन्न रहें, सूर्य भी प्रसन्न रहें, शक्ति भी प्रसन्न रहें, कृष्ण भी प्रसन्न रहें, वो भी शिव जी भी प्रसन्न रहें, सब लोग प्रसन्न रहें, तो वो किसी को नहीं प्रसन्न कर सकता, एक कृष्ण की पूजा करने से सब लोगों की पूजा करनी हो जाती, इस चीज़ को समझना चाहिए, तस्मिन पुष्टे भक्त्या अहम एक याग्राज्य, भक्ति करने से कृष्ण की शक्ति हो जाती है, अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है, एक एक साधे सब और सब साधे, इस चीज को याद रखना है, तो कुछ कठिन इनको ऐसा करना चाहिए। उनके बहुत से उपदेश हैं, हम लोग शाम को 4 बजे बैठेंगे, 4 बजे से 6 बजे तक उनके उपदेशों को हम लोग पाठ करेंगे, समझेंगे और वैष्णव लोग उनके संबंध में बतलाएंगे, वो सबको कृपा करें और भजन की शक्ति दें, उनके चरणों में यही हम प्रार्थना।
सब रागात्मिक और रागानुगा है। ब्रज की लीलाओं में, ब्रज की लीलाएं कृष्ण के जीवन आरंभ से, प्रकट काल से आरंभ कर उन्होंने वृंदावन में जो जो लीलाएं की वो सब ब्रज लीला है। गोकुल से लेकर गोकुल में गोचार जन्म लीला, वृंदावन में गोचारण लीला, साथ साथ में ये ब्रज को ले लो, जितना 84 पुरुष ब्रजमंडल ही ले लो, विशेष करके वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, ये सब वृंदावन ब्रज है। तो इसमें गोचारी इत्यादि लीला तो ही है, सख्य भाव का है, कासल्य भाव का है गोकुल में, और सख्य है वृंदावन में, नंदगांव में बासल्य भी नंदगांव में और गोकुल में। निकुंज लीलाएं उन्हीं कृष्ण की ब्रज लीला का ही एक अंग है, उसी के अंतर्भूत है। ये साकेत में, वृंदावन में, राधा कुंड में, गोवर्धन में, ये सब कुंज हैं, उनमें वो सब लीलाएं हैं। ये अत्यंत रहस्यपूर्ण है। हमारे गोस्वामियों ने इसको विप्रलम्भमयी और मिलनमयी इन दोनों लीलाओं का वर्णन किया है, क्योंकि तो और संप्रदायों में उन्होंने केवल दाम्पत्य का भाव ही लेकर के प्रधान रूप में स्वकीय लीला का वर्णन किया, कभी उनका वियोग नहीं। किंतु हमारे जितने रूप सनातन और पीछे के जितने भी लोग हैं, उन्होंने गोकुल की लीलाओं में बात्सल्य, नंदगांव के लीलाओं में भी पौगंड, और वहाँ पर भी किशोर, और उसमें भी वृंदावन और सब स्थानों में निकुंज लीला का वर्णन किया, इसलिए ब्रज लीला के अंतर्गत ही वो निकुंज लीला है। किंतु ऐश्वर्यमयी लीलाओं में, जैसे रामानुज संप्रदाय का है, उसमें ऐश्वर्यमयी लीला है। विशेष करके निम्बार्क संप्रदाय में रुक्मिणी जी का द्वारका का भाव उसमें नहीं है। उन लोगों में ये पीछे से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संपर्क में आने पर उसे प्रभावित होकर के उन्होंने राधा नाम रुक्मिणी के नाम के बदले लिख दिया।
अच्छा, रुक्मिणी के सामने राधा नाम।
और उनकी जितने भी लीलाओं का वर्णन है वो रुक्मिणी के नाम का वो सब वर्णन पीछे से उन्होंने। पिथरगंज संप्रदाय वो हमारे संप्रदाय से ही, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से ही उद्भूत हुआ है, किंतु उसमें वो केवल मिलन का ही रखते हैं, विप्रलम्भ का ही रखते हैं। बिना विप्रलम्भ के मिलन भी अधूरा है, इसको हमारे रूप गोस्वामी ने अच्छी तरह से दिख रहा है। खैर, ये सब बातें प्रसंग वत्स मैंने कहा। आज श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आविर्भाव के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ अनुशीलन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने वैष्णव धर्म के, विशेष करके महाप्रभु के विचारधारा को शुद्ध करने के लिए और उसको प्रचार और प्रसार करने के लिए जब तक इस जगत में रहे उन्होंने प्रयास किया। बड़े बड़े आचार्य लोग आए हैं, रामानुज मध्वाचार्य, उन्होंने राजाश्रय लेकर, राजाश्रय माने राजाओं का आश्रय लेकर, जैसे बौद्ध धर्म में अशोक को आश्रय, अशोक से लेकर के हर्ष तक तलवार के बल पर उन्होंने धर्म का प्रचार किया। सरयू ने भी दक्षिण भारत में राजाओं का आश्रय लेकर के रामानुज के शिष्य की, रामानुज की आंखें निकाल ली। रामानुज को निकालने के लिए तत्पर थे, किंतु चलाकी चतुराई से वे बच गए, उनके शिष्य को ही कुरेश का ही आंख निकाल लिया। इस तरह से यातना देकर के धर्म का प्रचार किया, जैसे क्रिश्चियन लोग, मुसलमान लोग भारत में आकर के रुपये के बल पर, स्त्रियों के बल पर, तलवार और बंदूक के बल पर ये सब अत्याचार करके धर्म का प्रचार किया, किंतु इस महापुरुष ने ये सब कुछ नहीं कर करके साधारण रूप में नवीन किशोर बालकों को ग्रहण करके और उनमें भक्ति का प्रचार करके उन बालकों के द्वारा ब्रह्मचारी और सन्यासियों के द्वारा विश्व में अल्प दिन में ही प्रचार, किसी राजा का आश्रय नहीं दिया। तत्राड़ी जी जो कह रहे थे काशीपुर बाजार में प्रभुपाद जी गए थे उस समय उनके राधारमण के गोस्वामी जी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा उसको देख करके बतला ब्राह्मण वैष्णव विजय ने उसमें लिखा अशोधन गोस्वामी तो उसमें बतला रहे हैं। वो गए थे वहां, वहां पर बहुत बड़े बड़े विद्वान काशी से, दक्षिण के कांजीवरम से, जनकपुर से, अयोध्या से और कहां वो नवद्वीप से, बड़े बड़े विद्या के केंद्र थे उसमें वहां पर बुलाए गए। उस समय वैष्णव धर्म का कुछ प्रारंभ नवोदित हो रहा था, भक्ति विनोद ठाकुर ने आरंभ किया। वहां पर गए तो वहां पर स्मार्ट लोग वही सब थे, वो लोग वैष्णव धर्म को सुनने नहीं चाहते थे, वैष्णवों को उस समय में पता नहीं था, वो लोग उस सभा में नहीं पहुंचे थे। तो वहां पर प्रभुपाद जी जब गए तो प्रभुपाद जी को थोड़ा सा समय दिया, केवल तो थोड़ा सा समय, उन्हें गए थोड़े समय में हम इसकी प्रतिष्ठा नहीं कर सकेंगे, हमको बतलाना पड़ेगा इस सब चीज को, ब्राह्मण क्या चीज है, वैष्णव क्या चीज है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, पर इसके संबंध में हमको बतलाना, भागवत पुराण और शास्त्र और समस्त शास्त्रों का प्रमाण हमको देना पड़ेगा। किंतु उन लोगों ने उनको नहीं सुना, तो उन्होंने उपवास किया वहां पर, कितने दिन, 6-7 दिन रहे, जिस 3 दिन उन्होंने केवल कुर्सी पत्र लिया और कुछ नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी, उनको बुलाया ही नहीं उस सभा में, केवल वहां पर गए और इनकी इच्छा थी कि वहां पर हम भाषण देंगे और अच्छी तरह से वैष्णव धर्म के लिए हम कहेंगे, किंतु उनको मौका नहीं दिया, तब फिर वहां से लौट आए, किसी के संबंध में गौर है। तात्पर्य क्या, हम वैष्णव धर्म के प्रचार करने के लिए, और हमको यदि 1 मिनट का भी समय नहीं दिया गया उन लोगों के ही विचार यदि सुनेंगे तो फिर क्या होगा, इसलिए नहीं। बल्कि एक समय की बात है, उसी काशीपुर में या कहीं और एक ब्राह्मण वैष्णव की सभा हुई थी बाली ढाई, तो उसमें प्रभुपाद जी वहां पर गए थे, उसमें हमारे पहले काशीपुर में ही एक वैष्णव सम्मेलन हो जिसमें गौरकिशोर दास महाराज जी को बुलाने के लिए गए, तो वो तो नहीं आए, तो प्रभुपाद जी को निमंत्रण किया, वहां पर जाने वाले थे तो वहां गए, तो वहां से लौट करके आए तो उन्होंने कहा ऐसी सभाओं में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मायापुर में रहो, और मायापुर में एक कपड़ा टनवा दिया, खेचवा दिया, एक ही कपड़ा थोड़ा सा, उसके नीचे बैठ करके हजारों लोग आएंगे, बस यहीं पर प्रचार हो, यहीं से आरंभ हो और विश्व में यहीं से सर्वत्र प्रचार होगा, तुमको ऐसी सभाओं में जाने की जरूरत नहीं है, दूसरों के द्वारा नियंत्रित हो, तुम्हारे लिए विश्व सब भरा पड़ा है। तब से प्रभुपाद जी उस सभा में न जा करके बल्कि स्वतंत्र रूप में सभाएं कर करके छोटे छोटे बच्चों को लिया, उनको ब्रह्मचारी वेश दिया, बाबा जी वेश नहीं, बाबा जी वेश उस समय कलुषित हो गया था, इसलिए ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य रह करके वेद शास्त्र उपनिषद श्रीमद्भागवत चैतन्य चरितामृत इत्यादि अच्छी तरह से अनुशीलन करके तत्व में प्रतिष्ठित हो करके और इसका प्रचार करने का लिए आदेश दिया। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी 16 वर्ष की उम्र में, वन महाराज जी और ये सब लोग थोड़े थोड़े उम्र में ही, वो लोग भी 18-20 वर्ष की उम्र में ये सब आए थे, बड़े बड़े सब शिक्षित कॉलेज में भी पढ़ने वाले थे वन महाराज जी को एक समय में, और हैगी ब्रह्मचारी जिनका नाम
माधव
महाराज, ये छोटी छोटे उम्र में थे,
नंद सुनु
ये गुरु महाराज जी से जूनियर थे, तो इनको काशी में भेजा था, उसमें गोपीनाथ कविराज भारतवर्ष में संस्कृत के सबसे बड़े लर्नेड पर्सन थे और बड़े उच्च कोटि के विद्वान संस्कृत के माने जाते थे और राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत थे। बहुत सुनहरे ग्रंथ भी लिखे हैं। उनके यहाँ पर गए मिलने के लिए, तो उस समय में वो घर में थे, वृद्ध हो गए थे, तो उस समय में ये लोग जाकर के दरवाजे पर गए जो हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तो उनकी पत्नी बोली, जैसे अभी वो स्नान कर रहे हैं आप लोग बैठिए, तो उनके घर में बैठे। बैठने के बाद में थोड़ी देर के बाद में वो बूढ़े बड़े विद्वान आदमी, उस समय फिर प्रिंसिपल थे, 60 वर्ष की या 50 से 60 के अंदर में उनकी उम्र रही होगी, तो वहाँ पर आए। उनका राष्ट्रपति भी सम्मान करते थे, देश के बड़े बड़े विद्वान लोग लोहा उनका मानते थे, विद्वानों में एक थे। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कहाँ से आए, छोटे छोटे अभी बच्चे हैं ना, 22-23 वर्ष के बच्चे थे, बन महाराज जी दुबले पतले कुछ सांवले रंग के थे और ये थोड़े से बड़े थे किंतु छोटी अभी उम्र थी। कहा कहाँ से आया है, तो हम लोग मायापुर से। मायापुर से? ओ, सिद्धांत सरस्वती के यहाँ से आया है जो कि वर्णाश्रम धर्म को उलाट पुलाट कर देता है, शूद्रों को भी जनेऊ देता है और धर्म को उसने गड़बड़ कर करके वर्णाश्रम धर्म ही चौपट कर दिया, वहाँ से आ रहे हो? तो नहीं, जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की है, जो कि साधारणों को भी ब्रह्म तत्व को दे करके उनको यथार्थ में ब्राह्मण बनाते हैं और विश्व में शुद्धा भक्ति का प्रचार करते हैं, उनके चरण कमलों से हम लोग आए। उन्होंने कहा जैसे आप यदि ऐसा कहते हैं तो एक श्लोक का केवल हमको अर्थ बतला दीजिए बस, और हम कुछ नहीं जानना चाहते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या किया है, इसके लिए हम एक श्लोक कहेंगे। आप भागवत का श्लोक है, आप तो पढ़े होंगे तो बोलो। तो उन्होंने कहा इसका अर्थ, जब बोलिए आप समझ गए, इसका अर्थ ये है, साधारण अर्थ ही कि जस्य जलक्षणम पुंसो वर्णाभिव्यजकम। हमारे शास्त्रों में हमारे प्राचीन ऋषियों ने, भगवान ने वर्णाश्रम धर्म को इस रूप में बनाया है कि इसके गुण के अनुसार में ये सब होगा। चतुर्वर्ण म्यास सिस्टम गुण कर्म विभाग सब, ब्राह्मण के गुण होंगे सहिष्णु होगा, दूसरों को उपनिषद इत्यादि की विद्याएं पढ़ाएगा, स्वयं पढ़ेगा, दान देगा, दान लेगा, संग्रह नहीं रखेगा, और सब विषयों में ब्रह्म तत्व को जानने वाला हो, ये ब्राह्मण का गुण। क्षत्रियों का गुण है देश की रक्षा करेंगे, सूर वीरता, सहिष्णु और अपने आप ही धर्म को मानेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, दान देंगे लेंगे नहीं। और वैश्य का लक्षण है वो देश की अर्थव्यवस्था को ठीक रखेगा, धन कमाएगा, कृषि करेगा, वाणिज्य व्यवसाय करेगा और दान के रूप में ब्राह्मणों को क्षत्रियों को सब प्रकार से सेवा करेगा और इतर जातियों की भी सेवा करेगा, गोपालन करेगा इत्यादि। और ये शूद्र हैं ये सेवा करेंगे, किस लिए? जो शोक करते हैं शरीर के लिए वो शूद्र कहलाते हैं। कोई मर गया, हाय हाय कर करके अपने भी मर गए, सब समय स्थूल दृष्टि रहती है, इसलिए यदि ये लोग ब्राह्मणों का संग करेंगे, सेवा करेंगे तो उनकी बुद्धि शुद्ध होकर के वैसे हो जाएगी, इस नियत से ऐसा सब बनाया गया। संग के प्रभाव से आदमी ऊंचा होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो जिस यदि बाप के बेटे में यदि उसका बाप वाला गुण है, यदि उस जाति वाला वर्ण का और आश्रम का, तो उसमें उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे रावण वो विश्वा मुनि का लड़का था, उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं हुए किंतु थे वो ब्राह्मण, इसलिए इसको राक्षस कहा गया, अंत्यज। किंतु प्रहलाद महाराज असुर कुल में होते हुए उनको ब्राह्मणों का भी गुरु माना गया। नारद ऋषि और व्यास ऋषि शूद्राणी के गर्भ से जन्मे थे किंतु इनको ब्राह्मणों का भी गुरु, चारों वेदों का ज्ञाता और विश्व ब्रह्मांड का गुरु इनको माना गया। इसके अतिरिक्त एक कहानी उपनिषदों में है ऐसा, जवाला नाम का एक लड़का था, ऋषि थे,
औरत
थी, एक ऋषि थे, उनका नाम उद्दालक था,
गौतम।
तो गौतम के यहाँ एक लड़का पढ़ने के लिए गया, छोटा सा 5 वर्ष का शिशु, उपनिषदों की बात। जब गया पढ़ने के लिए तो गुरु जी ने, गौतम जी ने पूछा, जैसे बेटा तुम्हारे माता पिता का नाम और जाति और आश्रम बतलाओ, वर्ण बतलाओ। कहे मैया ने तो हमको ये कहा नहीं, जो कौन से तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कौन जाति के हो। बेटा मैया से पूछ कर गया, पिताजी हैं तो नहीं, ठीक मैया के यहाँ गया, मैया ने जो बतलाया आकर के गुरु जी को बतलाया, मेरी मैया ने ये बतलाया है कि मैं स्वेच्छाचारिणी थी, मेरा कोई पति नहीं था, अब तुम किस आदमी से तुम्हारा जन्म हुआ कोई ठीक नहीं, मेरा नाम जबाला है, तुम हमारे पुत्र हो ये यहाँ तक जानती हूँ, तुम जाओ गुरु जी से यही
सब
जबाला सत्य काम। तो गुरु जी से जाकर के सच सच बात करता है, मैया ने हमको ये कहा, गुरु जी ने कहा तुम ब्राह्मण है इधर आ जाओ, बस उसको लेकर के यज्ञ पवत दिया और वेद शास्त्र की उपदेश उन्होंने उसको दिया, उसको ब्राह्मण माना। क्यों? जिसमें सत्य बाधिता है, कोई बात छिपाना नहीं चाहता, ये ब्राह्मण के अतिरिक्त नहीं, ये ब्राह्मण का गुण है इसलिए उसमें है, ये विद्या पढ़ने का अधिकारी है और ये ब्राह्मण के था, ये ब्राह्मण बनेगा, इसलिए उसको उपनयन दे करके ब्राह्मण उसको बनाया। ऐसे सब हजारों, एक दो नहीं हजारों सब उपनिषदों में गाथा है। इसलिए जिस जाति का जिस आश्रम का जो गुण बतलाया गया है वो उसमें यदि देखा जाए तभी उसको उस जाति को मानो या वर्ण का मानो, अन्यथा यदि नहीं है तो जिस जाति के गुण जिस व्यक्ति में है उसको उसी जाति में मानो। यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के शूद्रों के उसमें गुण है तो उसको शूद्र मानो, यदि उसमें क्षत्रिय के गुण है तो उसको क्षत्रिय मानो। यह वर्ण व्यवस्था किसी न किसी रूप में समस्त संसार के देशों में है, भले ही नाम नहीं, भारतवर्ष में नामकरण के कर करके ये साइंटिफिक वे में इसकी प्रतिष्ठा की गई थी। आज लोग इसको समझ नहीं पाते इसलिए उल्टा इसका चलते हैं, जब उल्टा ही चलते हैं तो इसीलिए हम लोग वैष्णव में कहा हरि नाम जो करेगा वैष्णव धर्म का भगवान का बनेगा वही सर्वोत्तम है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, इन लोगों ने उनसे पूछा इसका अर्थ बतला ये क्या होगा, जिसमें जिस वर्ण का गुण है उस व्यक्ति को उसी गुण का मान करके उसी वर्ण का उसको मानना होगा। जैसे कोई व्यक्ति है उसमें देखेंगे जैसे ये सत्यवादी है कि नहीं, भगवान में रुचि है कि नहीं, किसी का उपकार किसी का अपकार करता है निंदा करता है कि नहीं, और अर्थ के प्रति लोभ है कि नहीं। यदि ये देखे जो अर्थ के प्रति लोभ नहीं है, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए इसमें संस्कार है, सत्यवादी है, दूसरों का उपकार करता है निंदा नहीं करता, तो उसको क्या मानो, ये क्षत्रिय का गुण है तो क्षत्रिय मानो। ऐसे ही हमारी वर्ण व्यवस्था थी, पीछे से ये बदल करके कुछ गड़बड़ी हो गई, आप तो उनके पसीने निकलने लगे और एकदम थर 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 कांपते हुए धम से चेयर पर गिर पड़े, आंख बंद हो गई। विद्वानों के लिए सबसे बड़ा अपमान क्या है, यदि कुछ उत्तर नहीं दे सके ना,
निरुत्तर हो गया
तो सबसे बड़ा अपमान, बस एकदम पसीने छूटने लगे। इतने में वो बुढ़िया आई, अरे तुम लोग इसको मारोगे क्या, बाबा तुम लोग जल्दी से जाओ, माने हम लोग तो उत्तर के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उत्तर दे देंगे तो हम लोग चले जाएंगे, फिर उत्तर उनके मुख से कभी नहीं। तो ये प्रभुपाद के छोटे छोटे बात